कार्यक्रम परिक्रमा
नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत की गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में भी जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था। परिक्रमा के आज के इस अंक में मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं रम्या।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून विशाल एंड ऑल आवर लवली लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम रम्या एंड विथ मी टुडे इज माय को होस्ट विशाल एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट विशाल।
सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आज सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस के रंगपानी स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने से 3 रेलवे अधिकारियों सहित 8 लोगों की मौत।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसेस ग्रीफ, एक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफ 10 लाख रूपीज अनाउंस्ड टू द किन ऑफ ईच डिसीज्ड।
सिक्किम में भूस्खलन के कारण फंसे 2000 पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव कार्य शुरू।
सेकेंड एनुअल मीटिंग ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस टू बिगिन टुडे।
और देशभर में ईद उल अजहा का त्यौहार आज मनाया जा रहा है।
ईद उल अजहा, द फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस, इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद रिलीजियस फर्वर एंड गेटी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री टुडे। President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar and Prime Minister Narendra Modi have wished the people of India on the auspicious occasion of Eid.
अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारने की अपील करते हुए कहा कि ये त्यौहार साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है।
Prime Minister Modi said that may the special occasion of Eid ul-Azha further cement the bonds of harmony and togetherness in the society. He wished everyone to be happy and healthy. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level.
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं जमीन की, धरती की और उसे संरक्षित करने की जरूरत के बारे में भी।
Yes, listeners, today we will talk about World Day to Combat Desertification and Drought. Caring for land is an intergenerational responsibility. For millennia, our ancestors had a deep connection to the land. However, this connection is fragile, with more and more people heading to cities and no longer choosing to live and work on land. This year, the theme of the Desertification and Drought Day, United for Land, Our Legacy, Our Future, spotlights the future of land stewardship, our most precious resource to ensure the stability and prosperity of billions of people around the world.
स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित क्षेत्रों में वनों की कटाई और भूमि क्षरण की कम दर होती है। ये सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ज्ञान पूरी मानवता के लाभ के लिए संरक्षित और साझा किया जाए। इस वर्ष का मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस एक वैश्विक ज्ञान विनिमय मंच पर केंद्रित होगा, जो भूमि की देखरेख करने वालों की भावी पीढ़ियों के साथ पैतृक ज्ञान को संरक्षित और साझा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।
The United Nations Convention to Combat Desertification, which is UNCCD, is an international agreement aimed at addressing the issue of desertification and land degradation in arid, semi-arid and dry subhumid areas. The UNCCD was adopted in Paris on 17th of June 1994 and entered into force on 26th of December 1996. Coinciding with the convention's 30th anniversary, Desertification and Drought Day on 17th June 2024 will be a pivotal moment to raise global awareness and mobilize all parts of society in support of sustainable land stewardship. Listeners would be surprised to know that every second, an equivalent of 4 football fields of healthy land becomes degraded, adding up to a total of 100 million hectares each year.
रम्या, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि चार फुटबॉल के मैदानों के बराबर एक स्वस्थ और एक अच्छी जमीन जो है उसकी क्षमता उसकी कहें तो उसकी क्वालिटी उसकी गुणवत्ता खराब होती चली जाती है और 100 मिलियन हेक्टेयर्स ईच ईयर प्रतिवर्ष 100 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है कुल मिलाकर के एक बंजर की ओर बढ़ती जाती है बंजर होने की ओर और यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे हम कहते हैं के तहत 130 से अधिक देशों ने पहले ही 2030 तक भूमि क्षरण और बढ़ने से रोकने का वादा किया है और एक ऐसी दुनिया जहां मानव गतिविधियों का भूमि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
We've been talking so much about desertification, Vishal, but have we told our listeners what is exactly desertification? I think we should tell them now. It is the process by which fertile land becomes desert, typically as a result of various factors, including climatic variations and human activities. It involves the degradation of land in arid, semi-arid and dry subhumid areas, leading to the loss of productivity and biological richness.
देखा जाए तो रम्या, सूखा जो है जिसे हम ड्रॉट भी कहते हैं, बड़े पैमाने पर फसल की उत्पादकता में कमी, जंगल की आग और पानी की कमी जैसे कारण भी इससे पैदा होते हैं. ये जानमाल को तो नुकसान पहुंचाने के मामले में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बनता जा रहा है. भूमि का क्षरण और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड जिसे हम कहते हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण जो सूखे की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता जिसे हम कहें, वो बढ़ती जा रही है और इसकी गंभीरता भी हर साल बढ़ती चली जा रही है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक सूखा दुनिया की अनुमानित 3/4 आबादी को प्रभावित कर सकता है और ये दुनिया भर के लिए एक वैश्विक और जरूरी मुद्दा है. ये जो हम मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, इसको मनाने के उद्देश्य के अगर हम बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य यही है कि किस तरीके से मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाया जाए, यानी कि जिस तरीके से एक उपजाऊ भूमि बंजर बनती चली जा रही है और रेगिस्तान में तब्दील होती चली जा रही है, उसके बारे में किस तरीके से अवेयरनेस, जन जागरूकता बढ़ाई जाए लोगों के बीच में, ये इसका एक उद्देश्य है.
बहुत जरूरी है. और रहते जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, 50 डिग्री हो रहा है हर जगह, तो ये तो और ज्यादा होते जा रहा है, बंजर होती जा रही है जमीन.
और ये भी बताना इसका उद्देश्य है कि इस मुद्दों को प्रभावी ढंग से हम एड्रेस भी कर सकते हैं. इस बात पर हम ये भी बता सकते हैं कि समाधान मौजूद हैं इसके और सभी स्तरों पर भागीदारी की बात जब आती है, सभी स्तरों पर भागीदारी और इसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी इस समस्या से निपटा जा सकता है.
बिल्कुल. एंड विशाल, वी शुड पुट अ ग्लांस एट द कॉजेज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, विच आर नेचुरल कॉजेज लाइक प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट्स, क्लाइमेट चेंज एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स दैट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. अलॉन्ग विद दैट, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट, दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू डिजर्ट. Urbanization and industrial activities can also play a role by altering the natural landscape and depleting water resources.
रम्या, आपने urbanization की बात की और industrialization की बात की. औद्योगिकरण और शहरीकरण जो है ये जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे जो है एक जो कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. जिस 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 जमीन पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको काट करके आवासीय कॉलोनियां बनाई जा रही हैं.
जैसे जैसे लोग शहर में माइग्रेट होते जा रहे हैं, उनको रहने के लिए
और
जगह चाहिए.
इसके पीछे एक कारण और ये भी है कि जो फसल चक्र जो होता है, कहीं कहीं कुछ हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर साल में दो दो तीन तीन बार धान की फसल ली जाती है और धान की फसल जाहिर सी बात है कि बहुत पानी पानी की डिमांड करती है।
बिल्कुल।
और पानी जब कमी हो जाती है जमीन में तो पानी की जमीन की और मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है और धीरे धीरे बंजर की तरफ बढ़ती चली जाती है वो जमीन। मरुस्थलीकरण या कहें भूमि क्षरण और सूखा आज हमारे सामने सबसे जरूरी पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। वैश्विक भूमि क्षेत्र का 40% पहले ही नष्ट हो चुका है। स्वस्थ भूमि हमारे लगभग 95% भोजन का उत्पादन करने के अलावा कई और लाभ भी हमें उससे होते हैं। कपड़ा आश्रय के लिए सामग्री भी ये प्रदान करती है और नौकरियां और आजीविका के अवसर भी इससे पैदा होते हैं और हम बढ़ते सूखे बाढ़ और जंगल की आग से बचाती भी है ये हमें समस्या जो है। और मरुस्थलीकरण के प्रभाव के बारे में बात करें तो पर्यावरणीय प्रभाव जैसे वनस्पति की हानि, मिट्टी की उर्वरता में कमी जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे और मिट्टी की कटाव में वृद्धि देखी जाती है। आर्थिक प्रभाव अगर हम इसकी बात करें तो मरुस्थलीकरण कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है जिससे खाद्य सुरक्षा कम हो जाती है और गरीबी बढ़ती जाती है, विशेषकर खेती और पशुधन पर जो निर्भर ग्रामीण हैं। और सामाजिक प्रभावों की अगर हम बात करें तो ये आबादी के विस्थापन का कारण भी बन सकती है ये समस्या। किस तरीके से लोग बाग पलायन कर रहे हैं जब वहां पर रोजी रोटी के कोई साधन नहीं होते, कृषि योग्य भूमि नहीं रहती तो फिर वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं क्योंकि लोग अधिक उपजाऊ भूमि और बेहतर रहने की स्थिति की तलाश में पलायन कर जाते हैं और इससे शहरी क्षेत्रों में दबाव बढ़ता है और सामाजिक संघर्ष भी बढ़ता है और संसाधनों पर दबाव तो बढ़ता ही बढ़ता है।
जी, सो एक बात यह है विशाल जी कि जिंदगी एक तोहफा है, जमीन उससे भी बहुत बड़ा तोहफा है। हमारी जिम्मेदारी है कि उस जमीन की हम देखभाल करें, उसको बचाएं। इट्स टोटली अप टू अस टू रिस्टोर आर लैंड्स टू देयर फॉर्मल ग्लोरी एंड द ग्लोबल लैंड रेस्टोरेशन कमिटमेंट्स कैन ओनली बी अचीव्ड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ हु हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म देयर कम्युनिटीज बाय इनिशिएटिंग इनोवेटिव चेंजेस। UNCCD जो है वो रिकोगनाइज करता है यूथ को एज की चेंज मेकर्स।
और ये हम ही को तय करना होगा रम्या कि हम आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके की धरा देकर जाना चाहते हैं,
हम क्या तोहफा देना चाहते हैं आगे की जनरेशन के लिए।
तो भूमि के क्षरण को रोकने के लिए हमें सभी को अपने स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं जरूर प्रयास करने चाहिए।
बिल्कुल।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानते हैं आज उनके पास क्या विशेष रिपोर्ट है।
The 18th Mumbai International Film Festival for Documentary, Short Fiction and Animation Films is underway in Mumbai. In the morning, a panel discussion titled Unlocking the Force, Channeling Documentary Films to Drive Social Change was organized. The session was attended by Indian director Dr. Talakaru Srinivasaya Nagabharana and General Manager at NFDC D. Ramakrishnaya. The six-day festival will culminate on 21st of June. On Friday, the Mumbai International Film Festival featured the big screen international premiere of the documentary My Mercury. Directed by Joel Cheslett, the film offers a deeply personal and challenging journey into the life of her brother Yves Cheslett, a lone conservationist on Mercury Island off the coast of Namibia in South Africa. More from our Mumbai correspondent.
To live on an island, you need a certain kind of personality, says Joel Cheslett, highlighting her brother's wish to escape the world's noise and rush. The 104-minute documentary explores the life of Yves Cheslett and his conservation efforts on Mercury Island, where seabirds and seals are his only companions. His mission to reclaim the island for endangered species becomes a story of sacrifice, triumph, and deep connection with nature. The film examines the decline of endangered seabirds and other wildlife threatened by seals.
Thing about it, because what the film really proved to me is that, not the film, what Eve's experience proved to me is that one person can make a difference. In many ways, some people make it in political way, but in this ecological situation, one person can make a difference. So if one person can make a difference, the world's our oyster. If we really want to, and where there is a will, there is a possibility of doing, re-establishing balances that have been completely broken down by human greed.
My Mercury promises to be a thought-provoking documentary that not only highlights critical conservation issues but also dwells into the profound human connection with nature. Madhuri Pange for Parikrama from Mumbai.
और अब चलते हैं उत्तराखंड और उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र अब शिक्षा के साथ साथ कमाई भी कर सकेंगे। राज्य सरकार जरूरतमंद छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सीएम लीप अर्न वाइल यू अर्न योजना शुरू करने जा रही है। क्या है योजना और क्या है इसके लाभ, ये बता रही है हमारी उत्तराखंड से संवाददाता साक्षी सिंह।
प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र अब शिक्षा ग्रहण करने के साथ कमाई भी कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने सीएम लिप अर्न वाइल यू अर्न योजना को मंजूरी दे दी है। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जल्द ही इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान पर चयित मेधावी विद्यार्थियों को अधिकतम 6,000 रूपए मासिक परिश्रमिक दिया जाएगा। छात्रों को उनका परिश्रमिक सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। जल्द ही शासन स्तर पर इस योजना के संबंध में शासन आदेश जारी हो जाएगा। सीखो और कमाओ आधारित इस महत्वपूर्ण योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान सत्र के पात्र छात्र छात्राओं को संस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में काम सौंपे जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से पुस्तकालय संचालन सहायता, प्रयोगशालाओं में उपकरण संचालन, रखरखाव और प्रायोगिक सत्रों के लिए प्रयोगशाला सहायता संबंधी कार्य शामिल है। सीएम लिप अर्न वाई यू अर्न योजना के लिए स्नातक द्वितीय वर्ष या तीसरे और चौथे सेमेस्टर से लेकर स्नातक उत्तर के विद्यार्थी और शोधार्थी पात्र होंगे। योजना के लिए छात्र छात्राओं का चयन उनके समग्र शैक्षणिक स्कोर के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक छात्राओं को संबंधित संस्थान में पूर्णकालीन नियमित संस्थागत छात्र होना अनिवार्य होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
Moving towards the east in Sikkim, 3-month training course on conservation of Sikkim's cultural heritage concluded recently. Our correspondent Dili Ram Dulal elaborates on this.
The first 3-month training course on the conservation of cultural heritage of Sikkim concluded at the Sikkim State Archive and Museum Complex, Gangtok. Conducted from March 11 to June 15, 2024, the course was organized by the Sikkim State Archive Culture Department in collaboration with the Himalayan Society for Heritage and Art Conservation and supported by Tata Trust. Participants included representatives from the Sikkim State Archive, Namgyal Institute of Tibetology and Hmong from 4 monasteries. The training focused on wood and metal object was led by experts from the National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur and the Institute of Wood Science and Technology, Bangalore, among others. Coordination was handled by Mr. Alan Sharma and Mr. Chetan Pandey. An exhibition displaying artifacts and methodologies used during the course was held from June 14. Visits from cultural and ecclesiastical department official highlighted the event. Following the course, a 1 month in situ internship program will take place at respective centers. There are hopes to establish a full-fledged art conservation center for Northeast region in the future. Dili Ram Dulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
और रम्या, जहां पूरा उत्तर भारत जो है गर्मी और भीषण गर्मी और लू से परेशान है, तो वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो वहां लगातार भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति के कारण जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। बता रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक चौरसिया।
लगातार भारी वर्षा व बाढ़ की स्थिति के कारण पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र में जनजीवन काफी प्रभावित है। अविरल वर्षा के कारण मुख्य नदी टिस्टा का जल स्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण टिस्टा नदी के किनारे बसे सिक्किम और दार्जिलिंग के कई गांव और छोटे शहर के निचले इलाकों के घरों व दुकानों में पानी भर गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10, जो सिक्किम की एकमात्र जीवन रेखा है, विगत 3 दिनों से बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण हजारों पर्यटक सिक्किम में फंसे हैं। पश्चिम बंगाल के फंसे पर्यटकों की सुरक्षित निकालने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने वैकल्पिक मार्ग सिंगला दार्जिलिंग चेक पोस्ट पर पर्यटक सहायता केंद्र स्थापित किया है। इस संबंध में दार्जिलिंग के जिला शासक ने कल एक आदेश भी जारी किया है। दार्जिलिंग व कालिम्पोंग जिले को जोड़ने वाली सड़क पर टिस्टा नदी में पानी भर गया है, जिससे यातायात इस मार्ग पर भी ठप्प हो गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को कालिम्पोंग से लिखुभीर तथा सिक्किम के मल्ली के निकट रबी खोला तक यातायात बंद कर दिया गया है। सिलीगुड़ी से सिक्किम की राजधानी गैंगटोक जाने का मार्ग परिवर्तित किया गया है। सिलीगुड़ी से गैंगटोक जाने हेतु जहां अधिकतम 4 घंटे का समय लगता था, वहीं अब भाया लावा, कालिम्पोंग, रम्फू या रिनोक पाक्योंग वैकल्पिक मार्ग से यात्रा समय करीब 8 घंटे से अधिक लग रहा है। किराया जहां 400 से 500 रुपया लगता था, वहीं अब यात्रियों को 1000 से 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले आए समुद्री तूफान रेमल के बाद से ही सिक्किम दार्जिलिंग में भारी वर्षा जारी है तथा टिस्टा नदी का जल राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ जा रहा है, जिससे राजमार्ग बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी करशंग।
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Nisu moro deho, e desa mati re.
In today's episode, we remember Uriya social reformer Utkalmani Gopabandhu Das, who died on the 17th of June 1928. Das's crusade against untouchability, advocacy of widow remarriage, campaign for literacy, particularly vocational training, and above all, a deep commitment and compassion for poor and destitute have immortalized him.
Mo bhai bhoni, he utkala basi, swarajya sadhane na udati.
Gopabandhu Das was born on 9th of October 1877 in Suwandho village near Puri, Odisha. In 1909, he established Satyabadi High School in Sakhigopal, which was inspired by the Deccan Education Society. The school operated in the Gurukul tradition with an aim to impart a liberal education on a non-sectarian basis.
Das became the first president of Utkal Pradesh Congress Committee in 1920. Holding the post until 1928, he welcomed Gandhiji to the province in 1921. Das was arrested in 1922 when he received a 2-year prison sentence. Gopabandhu became All India Vice President of the Lok Sevak Mandal in April 1928. He became ill while attending a society meeting in Lahore and died on the 17th of June 1928.
We also remember independence activist Mani, a resident of District Amritsar, Punjab, who died on 17th of June 1919. Mani was active in organizing a hartal on 6th of April 1919 at Amritsar as part of the nationwide call of hartal given by Mahatma Gandhi to protest against the Rowlatt attack.
Mani was charged for killing Sergeant Rowland. He was executed on the 17th of June 1919.
We remember freedom fighter Prabhavati Namdev, a resident of Jabalpur, Madhya Pradesh. She took part in the civil disobedience movement in April 1932 and encouraged many other women to join it. She was arrested and imprisoned in the Jabalpur district jail and died in the prison due to tortures on 17th of June 1932. We salute the brave daughter of the country.
Independence activist Mundar, a close associate of Rani Lakshmibai, a resident of Jhansi, Uttar Pradesh, Mundar joined the First War of Indian Independence in 1857 and fought against the British under the command of Rani Lakshmibai. Mundar took part in driving the British out from Jhansi and its surrounding areas, including Kunch, Kalpi and Gwalior. The British, however, struck back and reached Jhansi in 1858. Mundar was killed while fighting against the British in Gwalior and later cremated on the 17th of June 1858 at Gwalior. Salutes the great martyr.
Aarambh hai prachand bol mastakon ke jhund aaj chandr ki ghadi ki tung haar do.
We also remember martyr Atta Mohammed, who took part in the First War of Independence in 1857. He fought the British at several places in the Bombay Presidency.
He was caught by the company troops in the course of an engagement and tried for desertion and mutiny against the British authority. Muhammad was sentenced to transportation for life in 1857. He died in the cellular jail on the 17th of June 1858. Salute the brave son of the soil.
और अब खेल के मैदान की हलचल।
दीक्षा डागर हैज सिक्योर्ड सिक्स्थ प्लेस टाई एट लेडीज इटालियन ओपन गोल्फ। अ कंसिस्टेंट प्ले रिजल्टेड इन अ 6 under 210 टोटल फॉर द वीक। नेक्स्ट वीक शी विल डिफेंड हर टाइटल दैट शी वन एट चेक लेडीज ओपन लास्ट ईयर। दीक्षा इज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू प्ले टू मेजर्स एंड द ओलंपिक गेम्स लेटर दिस ईयर।
टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से होगा। ये मैच ट्रिनिडाड में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले आज सुबह सेंट लूसिया में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 83 रन से हराकर प्रतियोगिता में पहली जीत दर्ज की। 202 रन के लक्ष्य के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 16 ओवर और 4 गेंद में केवल 118 रन ही बना सकी। सेंट विंसेंट में ही एक अन्य मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में केवल 106 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 19 ओवर और 2 गेंद में केवल 85 रन पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश सुपर 8 में पहुंच गया है। और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम हमारे सामने है अभिनेता मोतीलाल का। आज इनकी पुण्यतिथि है। दिलीप कुमार की फिल्म पैगाम हो, देवदास या राज कपूर की जागते रहो, इन सब फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले बीते जमाने के बेहतरीन अभिनेता मोतीलाल की आज 59वीं पुण्यतिथि है। मोतीलाल ने करीब 3 दशक तक हिंदी फिल्मों में काम किया। 1955 में आई फिल्म देवदास में इन्होंने चुन्नी बाबू का किरदार निभाकर अपार लोकप्रियता हासिल की। इन्हें हिंदी फिल्मों का नेचुरल एक्टर भी कहा गया, यानी कि इनको जाना जाता था इनके सहज अभिनय के लिए। लगता ही नहीं था कि ये अभिनय कर रहे हैं, इतना सहज अभिनय होता था। मोतीलाल नेवी में भर्ती होने के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन किस्मत ने इन्हें फिल्मों में पहुंचा दिया। 1940 में आई फिल्म अछूत में मोतीलाल ने अस्पृश्य व्यक्ति का किरदार निभाया। सामाजिक संदेश देती इस फिल्म में उनके जोरदार अभिनय की प्रशंसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी की थी।
टुडे इज द बर्थडे ऑफ टेनिस लेजेंड लियांडर पायस। बॉर्न ऑन 17 जून 1973, लियांडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन टेनिस एट द एज ऑफ 12। ही अर्न्ड इंटरनेशनल फेम व्हेन ही वन द 1990 विम्बलडन जूनियर टाइटल एंड रीच्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड जूनियर रैंकिंग्स एट द एज ऑफ 17। पायस हैज मेनी डेकोरेटिव टाइटल्स टू हिज नेम, इंक्लूडिंग द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर द अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, एंड ही इज ऑल्सो द विनर ऑफ 8 मेन्स डबल्स एंड 10 मिक्स डबल्स ग्रैंड Slam titles. He has made a total of 34 Grand Slam titles across men's and mixed doubles in his career, which is the second highest of all time among men. He is also the most decorated male tennis player in Asian Games history, with 5 golds and 3 bronze medals in every category and the highest Indian gold medal winner in athletics across all sports in Asian Games history.
और रम्या महेश भूपति के साथ डबल्स में इनकी जोड़ी बहुत कामयाब जोड़ी रही थी। हालांकि बाद में ये इन्होंने कुछ व्यक्तिगत कारणों से अलग जरूर हो गई, लेकिन ये जोड़ी जो थी जब मैदान पर उतरती तो दर्शक इनको देखने के लिए बहुत ललायत रहते थे। और अब बात करेंगे निशिकांत कामत की। आज के दिन इनका जन्म हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में 17 जून 1970 में। हिन्दी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता। उन्होंने दृश्यम, मुंबई मेरी जान और मदारी जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन किया है। इनकी पहली फिल्म डोंबिवली फास्ट ने मराठी सिनेमा में खूब प्रसिद्धि पाई। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इसी फिल्म से डोंबिवली फास्ट से की थी। और निशिकांत कामत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता फिल्म हवा आने दो से की थी। इसके बाद इन्होंने निर्देशन का रुख कर लिया और दृश्यम जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया।
Today is also the birthday of singer, composer and lyricist Sona Mohapatra, who came to mainstream prominence with the talk show Satyamev Jayate. Let us listen to this song sung by her.
Gali mein mare phere, paas aane ko mere, gali mein mare phere, paas aane ko mere, kabhi parakhta nain mere, tu kabhi parakhta tor,
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे यहीं अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए विशाल और रम्या को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। और अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार।